नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जेनीन एम बेनियस की बायोमिमिक्री, इनोवेशन इंस्पायर्ड बाय नेचर, विज्ञान, पर्यावरण और डिजाइन के संगम पर लिखी प्रभावशाली गैर कथा पुस्तक है। पहली बार 1997 में प्रकाशित यह पुस्तक बायोमिमिक्री को ऐसे दृष्टिकोण के रूप में स्पष्ट करती है जिसमें मानव समस्याओं के समाधान के लिए जीवित प्रकृति के रूपों, प्रक्रियाओं और तंत्रों से सीखा जाता है। बेनियस का केंद्रीय तर्क है कि विकास की लगभग 3.8 अरब वर्ष लंबी प्रक्रिया ने कार्यक्षम, अनुकूलित और अपेक्षाकृत संसाधन संयमी उपायों का विशाल भंडार बनाया है। इसलिए प्रकृति को केवल कच्चे माल के स्रोत की तरह नहीं बल्कि मॉडल, मापदंड और शिक्षक की तरह देखना चाहिए। पुस्तक खेती, ऊर्जा, पदार्थ निर्माण, चिकित्सा, कंप्यूटिंग और व्यापार के उदाहरणों के माध्यम से दिखाती है कि पत्तियों, प्रेयरी, मकड़ियों, चिंपैंजियों और कोशिकाओं से प्रेरणा कैसे मिल सकती है। इसका उद्देश्य तैयार तकनीकी नुस्खे देना नहीं बल्कि आविष्कार और आर्थिक गतिविधि के लिए अधिक पारिस्थितिक प्रश्न विकसित करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, प्रकृति को मॉडल, मापदंड और शिक्षक मानने की बायोमिमिक्री परिभाषा बेनियस बायोमिमिक्री को महज किसी जीव जैसी वस्तु बनाने से अलग रखती है। उनके अनुसार प्रकृति मॉडल है क्योंकि उसके रूपों और प्रक्रियाओं से डिजाइन संबंधी विचार लिए जा सकते हैं। प्रकृति मापदंड है क्योंकि किसी मानवीय नवाचार का मूल्यांकन इस प्रश्न से किया जा सकता है कि क्या वह जीवन को सहारा देने वाली पारिस्थितिक सीमाओं के अनुरूप है। और प्रकृति शिक्षक है क्योंकि यह दृष्टि मनुष्य को नियंत्रण और दोहन के बजाय अवलोकन, विनम्रता और सीखने की ओर ले जाती है। यह तीन भागों वाली परिभाषा पुस्तक को साधारण जैव प्रेरित इंजीनियरिंग से व्यापक बनाती है। लेखिका का जोर इस बात पर है कि प्राकृतिक समाधान अपने संदर्भ से कटे हुए नमूने नहीं है। कोई पत्ता ऊर्जा पकड़ते समय पदार्थों का चक्र भी चलाता है, कोई वन विविधता, पुनर्चक्रण और पारस्परिक निर्भरता के साथ कार्य करता है। इसलिए केवल बाहरी आकृति की नकल, जैसे किसी उत्पाद को पत्ते का आकार दे देना, बायोमिमिक्री नहीं है। उपयोगी अनुकरण के लिए यह समझना आवश्यक है कि वह जैविक रणनीति किन सीमाओं में काम करती है, ऊर्जा कहाँ से लेती है, अपशिष्ट के साथ क्या करती है और पूरे तंत्र पर उसका क्या असर पड़ता है। इस तरह पुस्तक नवाचार की सफलता को केवल गति, लागत या उत्पादन से नहीं दीर्घकालिक अनुकूलता से जोड़ती है। दूसरा, प्रेरी से सीखकर भूमि के अनुकूल और कम इनपुट वाली खेती। खाद्य उत्पादन के संदर्भ में बेनियस औद्योगिक एक फसली खेती की तुलना प्रेरी जैसे विविध बहुवर्षीय पारितंत्र से करती है। एक प्रेरी में अलग अलग गहराइयों तक जाने वाली जड़ें, विभिन्न पौध प्रजातियां और मौसम के प्रति विविध प्रतिक्रियाएं होती हैं। यह संरचना मिट्टी को ढकती है, पोषक तत्वों को चक्रित करती है और वर्षा तथा सूखे के प्रभाव को बांटती है। इसके विपरीत, एक ही फसल पर आधारित व्यवस्था अक्सर उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और जुताई जैसे बाहरी इनपुट पर अधिक निर्भर हो जाती है। पुस्तक का आशय यह नहीं कि खेती को जंगली प्रेरी में बदल देना सरल या पर्याप्त उपाय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि खेत को केवल उत्पादन इकाई नहीं जीवित पारिस्थितिक तंत्र की तरह डिजाइन किया जाए। बहुफसली व्यवस्था मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने वाली जैविक प्रक्रियाएं और स्थानीय जलवायु के अनुकूल फसलें इस सोच की दिशा दिखाती हैं। प्राकृतिक तंत्रों में लचीलापन विविधता और परस्पर सहयोग से आता है, न कि हर परिस्थिति को रसायनों से नियंत्रित करने से। बेनियस इस तुलना के जरिए कृषि का मूल प्रश्न बदलती है। प्रश्न केवल यह नहीं रहता कि प्रति मौसम अधिक उपज कैसे मिले बल्कि यह भी बनता है कि भूमि कई पीढ़ियों तक उत्पादक, स्थिर और कम प्रदूषणकारी कैसे बनी रहे। तीसरा, पत्ती की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया और स्वच्छ ऊर्जा की चुनौती। ऊर्जा वाले अध्याय में पत्ती बायोमिमिक्री का प्रमुख उदाहरण है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को उपयोगी रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। बेनियस इस प्रक्रिया को इसलिए महत्वपूर्ण मानती है कि इसमें ऊर्जा का स्रोत सूर्य है और जैविक प्रणालियां सीमित तापमान तथा पदार्थों के भीतर अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा रूपांतरण करती हैं। यह विचार सौर ऊर्जा, प्रकाश आधारित रसायन और ऊर्जा भंडारण पर शोध के लिए प्रेरक ढांचा प्रदान करता है। लेकिन पुस्तक प्रकृति की उपलब्धि को किसी आसान तकनीकी प्रतिलिपि की तरह प्रस्तुत नहीं करती। पत्ती में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, अणुओं का संगठन और ऊर्जा का सुरक्षित उपयोग अत्यंत जटिल प्रक्रियाएं हैं। मानव निर्मित प्रणालियों के लिए चुनौती केवल प्रकाश पकड़ना नहीं बल्कि उसे कुशलता से उपयोगी ईंधन या बिजली में बदलना, सामग्री की लागत नियंत्रित रखना और जीवन चक्र के पर्यावरणीय प्रभाव को घटाना भी है। यही कारण है कि बायोमिमिक्री को तैयार उत्तर के बजाय अनुसंधान की दिशा समझना अधिक उचित है। इस उदाहरण से पुस्तक की व्यापक कसौटी सामने आती है। ऊर्जा तकनीक की गुणवत्ता केवल उसकी क्षमता से तय नहीं होती, स्रोत का नवीकरण, निर्माण में लगने वाले पदार्थ, अपशिष्ट और स्थानीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव भी उतने ही आवश्यक प्रश्न है। पत्ती प्रेरणा देती है कि ऊर्जा व्यवस्था उत्पादन के साथ पुनर्भरण और चक्रियता को भी ध्यान में रखे। चौथा, मकड़ी, चिंपैंजी और कोशिका से चिकित्सा। सामग्री तथा कंप्यूटिंग की सीख बेन्यस अलग अलग जीवों के उदाहरणों से दिखाती हैं कि बायोमिमिक्री कई क्षेत्रों में काम कर सकती है। मकड़ी के जाल जैसे जैविक रेशे इस प्रश्न को सामने रखते हैं कि मजबूत और उपयोगी सामग्री अपेक्षाकृत हल्की, कम तापमान पर बनी और कम विषैले रसायनों वाली कैसे हो सकती है। यह सामग्री विज्ञान को केवल अधिक कठोर पदार्थ खोजने के लक्ष्य से आगे ले जाता है। प्रश्न यह बनता है कि संरचना, रेशा और निर्माण प्रक्रिया को इस तरह कैसे जोड़ा जाए कि प्रदर्शन और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व साथ चले। चिकित्सा के प्रसंग में पुस्तक पशुओं के स्वचिकित्सकीय व्यवहार के अवलोकन का उल्लेख करती है। बीमार या पोषण कमी से जूझते जानवर कभी विशेष पौधों या मिट्टी की ओर जाते हैं और ऐसे संकेत शोधकर्ताओं को संभावित औषधीय यौगिकों की जांच की दिशा दे सकते हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण के स्थान पर संकेत से अनुसंधान शुरू करने की पद्धति है। किसी पशु व्यवहार को स्वतः मानव उपचार नहीं माना जा सकता, इसलिए वैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य रहता है। कोशिका और प्रोटीन आधारित प्रक्रियाओं की चर्चा कंप्यूटिंग के लिए भी एक वैकल्पिक कल्पना देती है। जीवित प्रणालियां सूचना, पदार्थ और ऊर्जा को समानांतर तथा सूक्ष्म स्तर पर व्यवस्थित करती हैं। बेन्यस का उद्देश्य यह दावा करना नहीं है कि जैविक कंप्यूटिंग तत्काल पारंपरिक कंप्यूटरों का स्थान ले लेगी। वे दिखाती हैं कि जीव विज्ञान सूचना प्रसंस्करण की नई वास्तुकलाओं के लिए प्रश्न और संभावनाएं खोल सकता है। अंत में रेडवुड वन की तरह व्यापार में बंद चक्र और पारिस्थितिक जवाबदेही पुस्तक बायोमिमिक्री को प्रयोगशाला या उत्पाद डिजाइन तक सीमित नहीं रखती। व्यापार पर चर्चा में बेन्यस वन विशेषकर रेडवुड वन जैसे परिपक्व पारितंत्रों की कार्यप्रणाली से सीखने का प्रस्ताव रखती हैं। प्राकृतिक तंत्रों में एक जीव का अपशिष्ट दूसरे के लिए संसाधन बन सकता है। ऊर्जा मुख्यतः सूर्य से आती है और विविध घटक परस्पर निर्भरता के माध्यम से स्थिरता बनाते हैं। इस तुलना से रैखिक औद्योगिक मॉडल पर प्रश्न उठता है जिसमें संसाधन निकाले जाते हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं और अंत में अपशिष्ट फेंक दिया जाता है। बंद चक्र वाली वाणिज्यिक सोच में उत्पाद, पैकेजिंग और उत्पादन प्रक्रिया को आरंभ से इस तरह देखना होगा कि सामग्री फिर से उपयोग, मरम्मत, पुनर्प्राप्ति या सुरक्षित जैविक वापसी में जा सके। यह केवल कचरा प्रबंधन का मुद्दा नहीं है, इसमें आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा उपयोग, रसायनों की विषाक्तता और उत्पाद के पूरे जीवन चक्र की जवाबदेही शामिल होती है। प्राकृतिक तंत्र की नकल का अर्थ हर व्यवसाय को जंगल बना देना नहीं, बल्कि उसकी चक्रियता और सीमाओं के भीतर कार्य करने के सिद्धांत को समझना है। बेन्यस का योगदान यह है कि वे टिकाऊ व्यापार को अलग नैतिक परिशिष्ट की तरह नहीं रखती। उनके ढांचे में पर्यावरणीय प्रदर्शन स्वयं डिजाइन गुणवत्ता का हिस्सा बन जाता है। इससे कंपनियों को यह पूछने की चुनौती मिलती है कि उनका नवाचार स्थानीय जीवन प्रणालियों को कमजोर करता है या उन्हें सहारा देता है। निष्कर्ष में बायोमिमिक्री इनोवेशन इंस्पायर्ड बाय नेचर उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो डिजाइन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, कृषि, उत्पाद विकास, पर्यावरण अध्ययन या व्यवसाय रणनीति में रुचि रखते हैं। विज्ञान के सामान्य पाठक भी इससे लाभ ले सकते हैं क्योंकि बेन्यस जटिल जैविक विचारों को मानव समस्याओं से जोड़कर समझाती है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ किसी एक तकनीक की विधि सीखना नहीं बल्कि समस्या को नए ढंग से परिभाषित करना है। उदाहरण के लिए ऊर्जा के मामले में केवल अधिक बिजली बनाना पर्याप्त नहीं, उसके स्रोत, पदार्थों और अपशिष्ट का प्रश्न भी शामिल है। खेती में केवल उपज नहीं, मिट्टी और विविधता की दीर्घकालिक क्षमता भी महत्वपूर्ण है। इसी कारण यह पुस्तक सामान्य पर्यावरण चेतावनी या केवल हरित उपभोक्तावाद पर केंद्रित पुस्तकों से अलग दिखती है। यह विनाश के परिणामों की सूची बनाने के बजाय जीवित प्रणालियों को डिजाइन ज्ञान के सक्रिय स्रोत के रूप में रखती है। साथ ही इसकी सीमाएं समझना भी जरूरी है। प्रकृति से प्रेरणा लेना, वैज्ञानिक सत्यापन, सामाजिक न्याय, लागत और स्थानीय संदर्भ के कठिन प्रश्नों को समाप्त नहीं करता। हर जैविक उपमा उपयोगी उत्पाद में नहीं बदलती, फिर भी पुस्तक की स्थायी ताकत इसका वैचारिक ढांचा है। मॉडल, मापदंड और शिक्षक के रूप में प्रकृति को देखने से पाठक दक्षता की संकीर्ण परिभाषा से आगे बढ़ता है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए मूल्यवान है जो मानव तकनीक को जीवन समर्थक प्रणालियों के साथ अधिक संगत बनाने की बौद्धिक भाषा और प्रारंभिक दिशा चाहते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जेनिन एम बेन्यस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।